ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब की दो दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना होंगे। वे क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। श्री मोदी की ये तीसरी सऊदी अरब यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की ये यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के लिए वर्ष 2016 में आरंभ व्यापक राष्ट्रीय रणनीति पर तेजी से काम करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आपसी संबंध और मजबूत होने की संभावना है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कल शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान श्री वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान नेता बताया और कहा कि श्री मोदी से मिलना उनके लिए एक सम्मान की बात है। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और उनके बच्चे तथा अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने उनके लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। श्री वेंस के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंस कल रात जयपुर पहुंच गए। वे अपने परिवार के साथ तीन दिन जयपुर में रहेंगे। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति की भारत की पहली यात्रा है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की आज बैठक होगी। बैठक के पहले सत्र में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत होगी। इसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन झा के साथ एक सत्र होगा। अगले सत्र में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीएस चौहान शामिल होंगे। अंतिम सत्र राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी के साथ होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने और आर्थिक विकास को गति देने में बांस की क्षमता का पता लगाना है। इसका आयोजन लातूर की फीनिक्स फाउंडेशन संस्था और भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार ने ईसाइयों के सर्वोच्च पादरी पोप फ्रांसिस के सम्मान में तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पोप फ्रांसिस का कल निधन हो गया। दो दिन का राजकीय शोक आज और कल रहेगा, जबकि अंतिम संस्कार के दिन भी राजकीय शोक होगा। देशभर में राजकीय शोक के दौरान सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईस्टर पर 30 घंटे के एकतरफा युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने के बाद यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान पूरी ताकत के साथ फिर से शुरू हो गया है। रविवार आधी रात तक चले युद्ध विराम में दोनों पक्षों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए और दावा किया कि समझौते का उल्लंघन किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख पर तीखी टिप्पणी के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों और डॉलर में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्याज दरें कम न करने पर केंद्रीय बैंक के प्रमुख की आलोचना की थी। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ब्याज दरों में कटौती का आग्रह किया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित फंडिंग कटौती पर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। कल दायर किया गया यह मुकदमा उस विवाद का हिस्सा है जो पिछले सप्ताह तब और बढ़ गया जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन की मांगों की सूची को अस्वीकार कर दिया। भारत की सिमरनप्रीत कौर बरार ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ ISSF विश्व कप में रजत पदक जीता है। कल पेरू के लीमा में सिमरनप्रीत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता। लीमा विश्व कप में भारत का यह चौथा रजत पदक है। प्रतियोगिता में भारत अब तक 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीत चुका है। आईपीएल 2020 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स को 39 रनों से हराकर अपनी छठी जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।